धौला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेभ्य
ओम नमः
सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिनेन मिहुं वेयण महाहियारम् विविहियारम् परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है वेदना नामक, उसमें अपना वेदना अनुयोग द्वार चल रहा है। और अभी हम आए हैं दसवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 95 पर। 95 जीव यो मध्य की बात हमारी 61 नंबर के पृष्ठ से चल रही थी, क्योंकि वो काल यो मध्य क्या पहले समझा हमने, फिर जीव यो मध्य क्या होता है, यवाकार रचना, तो अभी उसमें अल्प बहुत्व बता रहे हैं। तो अल्प बहुत्व तीन प्रकार से बता देंगे, अधस्तन अल्प बहुत्व। अधस्तन कहने से योग मध्य को लेकर जघन्य स्थान तक, उसको अधस्तन कहेंगे। दूसरा है उपरिम अल्प बहुत्व, यानी वहां पर भी योग मध्य से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक। और जो उभयत्र अल्प बहुत्व, दोनों को यानी पूरे ही पूरी जो योग मध्य रचना है पूरे को मिलकर वहां अल्प बहुत्व बताएंगे। अब यहाँ शुरू करते हैं हम, उसके पहले हमारे जो 76 नंबर के ऊपर जो एक टेबल है उसको हमको ख्याल में लेना है। जरा वो निकालो टेबल, क्योंकि कौन सी संख्या किससे कितने ज़्यादा है वो वहाँ से हमें अच्छी तरह से संदृष्टि के द्वारा समझ में आ जाएगी बात। देखो बीच में तो 128 है, सेंटर में है 128 और जघन्य स्थान है 16। बीच वाले सभी स्थानों का मिलकर कितना होता है, हमने कल योग निकाला था। देखो 128 के जो नीचे वाली जो गुणहानी है यानी 112 96 80 और 64, उसको 352 था, क्योंकि 128 को छोड़ना है हमको, तो उसकी टोटल 352 थी। उसके नीचे 56 48 40 और 52, इसकी हमने टोटल देखी थी 176 कुछ था ही ना, हाँ 176। हाँ और 28 24 20 और 16
88
वो नहीं, अभी नहीं छोड़ना है,
पहले छोड़ा था, अभी नहीं छोड़ा,
अभी तो 88 लेना। अच्छा छोड़कर बराबर है, 16 को हम अलग स्थान ले रहे हैं, 72 क्योंकि जघन्य स्थान 16 है, मध्य स्थान 128 है और बीच वाले सभी स्थानों की टोटल 600 हो जाएगी ना, हाँ 600 हो जाती है। अभी इसमें अल्प बहुत्व देख रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे अपने पृष्ठ से। देखो देखो 128 मध्य है, 16 नीचे का स्थान है, पहली गुणहानि का पहला स्थान ऊपर का 16, ये जघन्य हुआ ये उत्कृष्ट हुआ, और बीच वाले सब की मिलकर कितनी है टोटल, तो अभी हमने निकाली यानी वो 352 थी, फिर 176 72 सब मिलकर, 16 को छोड़ो और 128 को छोड़ो, बाकी बीच वाले सभी स्थान मिलकर 600 होते हैं। अभी इतना हमने, क्योंकि बार बार हमको पेज पलट कर वो देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने पहले ही देख लिया। अब यहाँ 95 पेज पर आना। अभी इसमें अल्प बहुत्व हमको देखना है, तो एक नंबर डालना, जघन्य योग स्थान के जीव सबसे स्तोक है, स्तोक है ना अल्प है, अल्प बहुत्व, कम संख्या से लेकर अधिक संख्या की ओर हम चलेंगे, एक नंबर है। दूसरे पॉइंट पर उनसे एवं मध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं, हमने देखा था ना 8 गुणे हैं, और वो 8 कैसे निकाला था, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 है उसकी, नीचे 3 गुणा नहीं है, 3 बार 2-2 लिख के गुणा किया तो अन्योन्य अभ्यस्त 8 आई, तो जघन्य योग स्थान से वो 8 गुणा है, या मध्य से लेकर वो उतने उतवे भाग प्रमाण, 8वें भाग प्रमाण, यहाँ यथार्थ में उसकी संख्या असंख्यात है, इसलिए कहते हैं दूसरे नंबर पर यव मध्य के जीव असंख्यात गुण है। गुणकार क्या है, यव मध्य से अधस्तन सब गुणहानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, जो हमारे संदृष्टि में 8 है, समझ में आते ना, आपने नंबर 1, 2, 3 डाले ना, हाँ, जो कि अभी यहाँ तो हमारी संख्या 8 है, यथार्थ में कितनी है, पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र है। अब आगे बढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट, अभी हमने 16 देखे, 16 से 8 गुना 128 देखे, अब उसके आगे देखना है, ये वो मध्य से अधस्तन और जघन्य योग स्थान से उपरीम जीव असंख्यात गुणे हैं, 128 से कंपेयर कर रहे हैं। अभी हमने बीच वाले कितने देखे, अभी हमने टोटल करके देखे तो 600 है, तो 128 से 600 ये संख्या कितनी होगी, असंख्यात गुणी हो जाएगी। यही लिखे हैं, देखो तीसरे पॉइंट पर फिर मैं पढ़ती हूँ, ये वो मध्य से अधस्तन, अधस्तन है नीचे, और जघन्य योग स्थान के उपरिम यानी ऊपर के जीव असंख्यात गुणे हैं, यानी बीच वाले सभी स्थानों में जीवों की संख्या उसके टोटल की। गुणकार क्या है, तो कहते कुछ कम 1.5 गुणहानियां गुणकार है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी वो 128 से 600 कितने गुना है, इस तरह से उन्होंने वो तो कहते तो 1.5 गुणहानियां गुणकार है, और उसका प्रमाण कितना होगा, श्रेणी का असंख्यातवे भाग प्रमाण, उसकी संदृष्टि 75/16 है। अब 75/16 कैसे निकाला उन्होंने, तो 128 से 600 कितने गुना है, तो 600 से 128 से भाग दे दो, 8 का भाग देंगे, नीचे 16 आ जाएंगे और ऊपर 56, 8×5=40, 75/16 आ जाएंगे। ये समझ में आई बात,
ये क्या आया,
गुणकार, हाँ, और वो यथार्थ में वो 1.5 गुणहानि है, कुछ कम 1.5 गुणहानि, इससे यव मध्य को गुणित करने पर अधस्तन सब जीवों का प्रमाण आता है, वो नेचुरली है ना, अभी हमने ये भागहार निकाला, ये ऐसा निकाला 600/128, उसको हमें सॉल्व किया तो उसका प्रमाण आया। अगर वो नहीं रखते ऐसे 600/128 ही रखते, देखो क्योंकि आगे का स्टेटमेंट उसके द्वारा ही समझ में आएगा, 128 से 600 कितने गुना है, तो 600/128 इतने गुना है। आगे क्या लिखा है, उससे यव मध्य से सॉरी इससे यव मध्य को गुणित करने पर सब जीवों का प्रमाण आता है। अब उसके वो 128 को गुणित करो तो वहां का वो 600 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टेटमेंट है वहां का, अभी 4 नंबर डालना है, अभी 600 से आगे उसकी कंपैरिजन करना है।
एक मेरा क्वेश्चन था, 16 से जो हम लोग यवमध्य का गुणकार देखते हैं, उससे
16 का कहाँ गुणकार है,
16 सबसे जघन्य राशि लिया,
हाँ,
उससे 128 कितना गुणा है,
असंख्यात गुणा,
वो पल्योपम के असंख्यात विभाग प्रमाण,
वो तो गुणहानि का प्रमाण है, उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालना पड़ेगा ना, उतनी बार लो लिखकर आपस में गुणा तो करना पड़ेगा ना। नहीं, ये अन्योन्य व्यस्त राशि कोई पल्योपम का असंख्यात भाग का अन्योन्य व्यस्त राशि गुणकार है जो कि पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। हाँ,
तो पल्योपम के असंख्यात भाग से नीट गुणा नहीं आया, असंख्यात गुणी है
नेचुरली। ये 16 से 128 आठ गुणा है और 128 से 600 कितने, 75/16 कितने हो गया, वो आठ नहीं नहीं कम हुआ, 16×64 चार पूर्णांक समथिंग। अभी एग्जैक्ट उसकी उसको मैं फिट मत करो, फिट मत करो उसको, क्योंकि गुणहानि का प्रमाण, एक गुणहानि का प्रमाण श्रेणी का असंख्यात भाग,
एक गुणहानि का प्रमाण श्रेणी का असंख्यात भाग, और डेढ़ गुणहानि का प्रमाण भी श्रेणी का असंख्यात भाग से बहुत ज्यादा।
यहाँ लिखा कहाँ मंगल है कपल्ले के असंख्यात भाग, यहाँ क्या लिखा है? तीन पॉइंट में पढ़ती हूँ, गुणकार क्या है, कुछ कम डेढ़ गुणहानिया गुणकार है और जो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। अपने पल्ले का असंख्यात भाग ऊपर बताया था,
पल्ले का असंख्यात भाग पहला गुणाकार है,
नहीं गुणहानि शला का थी। गुणहानि शला का अन्योन्य अभ्यस्त राशि को नहीं कहा उसमें,
अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है जो कि गुणकार, उन्होंने गुणकार का प्रमाण
हाँ, लिखा है ऊपर देखो, जव मध्य हिट्ठे में सव गुणहानि शलाकाणम अन्योन्य अभ्यस्त राशि पलिदो मस असंख्यजित भागमेत्व। अभी आप नाना गुणहानि का प्रमाण निकालो और अन्योन्य अभ्यस्त राशि का निकालो। नाना गुणहानि का प्रमाण कितना है?
नाना गुणहानि आठ है, नहीं नीचे की तीन
है, ओरिजिनल आप संदृष्टि निकालो, ओरिजिनल में संदृष्टि,
ये तो अधस्तल देख रहे हैं ना, तो नाना गुणहानि वहाँ पे
ओरिजिनल जहाँ से स्टेटमेंट शुरू हुए है उसको, यव मध्य की बात जहाँ शुरू हुई ना वहाँ से निकालो।
ये 77 से शुरू हुई है, यव मध्य की गुणहानि 416
पेज नंबर 75 नहीं, वहाँ अन्योन्य व्यस्त राशि निकाली होगी ना, परंपरोपनिधा
नहीं, ये 77 पेज पर यौवध्य की गुणहानि
74-75 में है ना, श्रेणी प्ररूपणा नाना गुणहानि शलाकाय पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र है और एक गुणहानि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र है। ये गुणहानि शलाकाओं का वो उतने बार दो लिखकर आपस में गुणा करना पड़ेगा। अब अन्योन्य अभ्यस्त राशि की भी बात आई थी, आई होगी कहीं, वो देख लो, क्योंकि जब हमने 128 को गुणा कर दिया था ना वहाँ, फिर उसका प्रमाण बताया होगा। एक मिनट, यही बात हमने जो गुणा करके जो अवस्थित भागार वगैरह देखे थे वहां ये निकालना जरा। जहां वो अन्य अभ्यस्त राशि बताई होगी 79-80 यही में करें। हाँ, 79 पर ही है, अथवा यव मध्य से अधस्तन नाना गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि का जितना प्रमाण है उतने जघन्य योगसान के जीवों का यदि एक यव मध्य प्राप्त होता है, परंतु उसका प्रमाण लिखा है क्या है? हाँ देखो क्या प्रमाण है, यव मध्य की अधस्तन अन्योन्य व्यस्त राशि का, पर वो कितना है मालूम नहीं, कुछ कम डेढ़ गुणहानि में भाग देने पर, यानी डेढ़ गुणहानि ज्यादा है तभी तो उसको भाग दिया ना, असंख्यात यव मध्य आते हैं, असंख्यात यव मध्य आते हैं तो यव मध्य ही असंख्यात श्रेणी है। ये जरा अन्य अन्य अभ्यस्त का राशि का प्रमाण निकालना जरा कहीं पर।
ये तो बराबर बैठ जाता है, इससे तो जगन्य जीव जगन्य स्थान में जीव 16 है, यहू मध्य में 128 है और 128 से 600
यहाँ पर 64। हाँ, क्योंकि उसका प्रमाण देख लेंगे ना अन्य अन्य अभ्यस्त राशि का नीचे के। नाना गुणहानि शलाकाओं की अभ्यस्त राशि से तीन गुणा नहीं,
ये तो योग स्थान की प्रगतना है ना।
ये 61 से शुरू हुआ था ना, उसका प्रमाण पेज नंबर 62 पर देख रहे हैं अभी। हर एक में वो तो सभी मिलकर जगत पत्र का वो देखा था हमने, इतने जीव
जगत पत्र हाँ। क्या संख्या के वाक्य प्रमाण है
क्योंकि वो पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण तो गुणहानिया है और एक एक गुणहानि
जगत श्रेणी
असंख्यात प्रमाण है,
जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। खाली मैंने क्यों पूछा कि कई गुणहानि में जगत स्थान से उत्कृष्ट स्थान तक जाएंगे तो वहां पे अभी अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी हो जाएगी?
क्या क्या क्या
एक ही गुणहानि में जगन्य स्थान से,
एक ही गुणहानि में अन्योन्य अभ्यस्त राशि कहाँ से आई?
अच्छा वो नहीं आई,
अन्योन्य अभ्यस्त राशि क्यों कहते हैं? कितने बार वो दो गुणा होना है या कितने बार घटना है उसके लिए वो आती है अन्योन्य अभ्यस्त राशि, यानी वो जिसको हम कहेंगे ना कि परम्परोपनिधा में उसका कथन आता है अन्योन्य अभ्यस्त राशि का। यानी यहाँ तो पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण अन्योन्य अभ्यस्त राशि सॉरी नाना गुणहानियां है, उतनी बार लिखकर आपस में गुणा करना है तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि आनी है। जरा यहाँ मिलेगा ना, एक मिनट कर्मकांड देना मुझे।
थोड़ा क्लियर हो जाएगा,
नीला पुस्तक है वो बाहर उसका लेबल दिख रहा है, वो तो व्हाइट बाहर से व्हाइट दिख रहा है, वो देना। हाँ, काल की अपेक्षा फिर हमको जीव की अपेक्षा देखना था ना, जीव यो मध्य, ये पेज नंबर 246 से शुरू हुआ था, आपके पास है क्या?
हाँ, मैंने निकाला था।
उसमें मिलता है क्या कहीं पर, यानी वहाँ अन्य अन्य अभ्यस्त राशि की बात होगी तो देख लेना। ये पेज नंबर 251 पर देखे, यथार्थ कथन कह रहे वहां पर। एक्चुअली क्या है, यहाँ वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण कहा है परंतु उसका यथार्थ में कथन देखो 252 पेज पर। पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात वे भाग प्रमाण नाना गुणहानियां है। अभी अर्धच्छेद प्रमाण अगर कहेंगे तो यथार्थ में वो तो पल्ले के असंख्यात वे भाग होना है। उतने बार यानी अन्य अभ्यस्त राशि पल्ले का असंख्या तो भाग ही होगी। ऐसा मान लेते, अभी हमने कितना था अन्य अभ्यस्त राशि 8 मानी, और 8 के अर्धच्छेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो उतने हमारे अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानी है। नीचे 8 के अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानिया है, तो उसके अन्य अभ्यस्त राशि 8 हो जाएगी। तो यहाँ यथार्थ में ऐसा ही कहा कि नीचे और ऊपर अलग अलग पल्ले के अर्धच्छेदों के असंख्यात भाग प्रमाण नाना गुणहानिया है, तो उनको आपस में गुणा करना है इतने बार दो दो, तो पल्ले के अर्धच्छेद पल्ले के असंख्यात भाग आ जाएगा, यानी वो अन्योन्य अभ्यस्त राशि हो गई। और गुणहानि का एक एक गुणहानि में उसका गुणहानि का आयाम जो है
वो श्रेणी का संख्या
कितने, यानी आयाम किसको कहें,
एक एक गुणहानि का
है, इसमें इतने स्थान पाए जाते, इतने स्थान पाए जाते, इतने योग स्थान है। गुणहानि का अर्थ क्या है? इतने योग स्थान जाकर जीवों की संख्या दुगुनी होगी या आधी होगी, हम नीचे के ऊपर देखते हैं, ऊपर से नीचे उस पर डिपेंडिंग है। वो श्रेणी का असंख्यात्व भाग है। यानी देखो यहाँ स्पष्ट शुद्ध में लिखा है पेज नंबर 252 पर 249 की टीका देखो, नाना गुणहानि प्रमाण दो अंक लिखकर, यानी 6 का असंख्यात्व भाग, 6 यानी पल्ले के अर्धच्छेद को 6 कहते हैं उसका अर्ध, यानी पल्ले का असंख्यात्व भाग हमारी अन्योन्य अभ्यस्त राशि है, वो दोनों का ऊपर नीचे दोनों का अर्धच्छेद करना, तो पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात भाग प्रमाण नाना गुणहानिया है, और उतने बार दो लिखकर परस्पर गुणा करने पर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण अन्य अभ्यस्त राशि आती है। बराबर है ये?
नाना गुणहानिया जो हम लोग पल्ले के असंख्यात भाग में वो बराबर है कि पल्ले के
अर्धच्छेद के असंख्यात भाग,
तो अर्धच्छेद का असंख्यात भाग प्रमाण कितना है? वो भी पल्ले का असंख्यात भाग
वही होगा, इसीलिए यहाँ सामान्य से कथन है, और वहाँ स्पेसिफिकली क्योंकि पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात भाग प्रमाण गुणहानिया कहते हैं, तो नेचुरली अन्योन्य अभ्यस्त राशि पल्ले के असंख्यात भाग हो जाती है। समझ में आती है? उतने गुणा वो देखो ओरिजिनल जघन्य में भी जीव कितने हैं असंख्या जगत श्रेणिया, और यो मध्य में कितने हैं असंख्या जगत श्रेणिया, तो कितने बार गुणा करना, तो नीचे के अन्य अभ्यस्त राशि से गुणा करना। अभी क्या प्रश्न है? हाँ, अभी हम जो पढ़ रहे थे पेज नंबर 95 पर, यहाँ लिखा ना अन्योन्य अभ्यस्त राशि, अभी ये अल्प बहुत्व के 1, 2, 3, 4 चौथी लाइन में गुणहानि शलाकाओं की, सब गुणहानि शलाका, गुणहानि जो शलाका है वो पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग है। और अन्योन्य अभ्यस्त राशि जो है वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, आगे लिखा है जो कि पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र है। यहां तक आ गई ना बात, यानी 16 से ये वो मध्य कितने गुणा है, तो 8 गुणा कर दिया है। देखो यहाँ ये इसलिए इनको नहीं फिट बैठ रहा है कि यहाँ तो 16 से 128 8 गुणा किया, और एक गुणहानि का प्रमाण हमारा 4 है जो कि श्रेणी का असंख्यात भाग प्रमाण है।
वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मेरे को,
क्योंकि संदृष्टि कैसे उसमें इतनी गुणा करेंगे, संदृष्टि में तो कुछ लिमिटेशन है ना, वो 8 और ये 4 इसलिए वो ज्यादा है, इस तरह से उसको नहीं लेना है।
वो तो
पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण अन्य अभ्यस्त राशि है, और यहाँ एक गुणहानि जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है, डेढ़ गुणहानि भी उतनी होगी ना, उसको डेढ़ गुणा करो। अब देखो तीसरा पॉइंट फिर पड़ती है, एवं मध्य से अधस्तन और जघन्य योग स्थान से उपरिम जीव असंख्यात गुणे हैं, यानी 128 से 600 जीव कितने गुणा है वो बात निकाली, गुणकार क्या है? कुछ कम डेढ़ गुणानियां गुणकार है। अभी यहाँ पर भी देखो ना, 75/16 है तो 16 चौक 64 और फिर वो समझ लो डेढ़ गुनिया गुणहानि से कुछ कम है, क्योंकि एक गुणहानि हमारी 4 है, डेढ़ गुणहानि हमारी 6 हो जाएगी, उससे कुछ कम कहना। ये यथार्थ में फिट होगा, यहाँ फिट होने में बहुत मुश्किल है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है। यानी डेढ़ गुणहानियां जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग में और अन्योन्य व्यस्त राशि जो थी वो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण थी। अब उसकी संदृष्टि 75/16 ये हमने पढ़ा था। इससे यवमध्य को गुणित करने पर अधस्तन सब जीवों का प्रमाण होता है। 75/16 × 128 किए तो 600 आ गए। यानी उल्टा फिर उल्टा करके उसको बता कर उन्होंने बता दिया। अब 4 नंबर का पॉइंट, उससे यानी 600 से यवमध्य से अधस्तन सब जीव विशेष अधिक है। अभी आपने जो हमने पार्टी पर लिखा था, हमने ऊपर 128 लिखे, बीच में 600 लिखे और नीचे 16 देखे। शुरू किया एक नंबर पर 16, दो नंबर पर 128, तीन नंबर पर 600 से अभी चौथे नंबर पर 128 के नीचे सारे कौन से 600 + 16, वो क्या कहेंगे 600 कितने हैं, वो विशेष अधिक है।
16 प्रमाण विशेष अधिक,
देखो तो कहते हैं कि विशेष अधिक है, कितने अधिक है? जघन्य योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। हमारी संदृष्टि में 600 + 16 616 हो गए। यहाँ तक बात ख्याल में आई? उनसे अजघन्य योग स्थान में, अभी अजघन्य का अर्थ समझ लो,
16
अभी हम 616 तक आए थे, अब 16 को छोड़ो क्योंकि 16 जघन्य है, उसको छोड़ेंगे तो 128 तक बाकी सभी जो है वो अजघन्य कहलाएंगे, उत्कृष्ट भी अजगण्य में आ जाएगा। यानी अभी क्या करना है, 616 में से 16 माइनस करो तो 600 रह जाएंगे और 128 मिला दो तो 728 हो जाएंगे। तो वो कितने होते हैं, यानी 616 से 728 कितने अधिक है? तो कहते कि वो जगन्य का उसमें से माइनस करो और उत्कृष्ट का मिला दो संख्या। तो कहते हैं यवो मध्य के जीवों की संख्या में से जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या कम कर देने पर जितना प्रमाण शेष रहे उतने अधिक है। उन्होंने पहले 128 में से 16 माइनस किए और बाद में उसमें मिला है, हम क्या करेंगे, 616 में से 16 माइनस करो और 128 मिलना दो, बात एक ही एक है, 728 आ गए। तो कितना अधिक है, विशेष अधिक है। अभी 728 से उनकी अपेक्षा यवमध्य से लेकर अधस्तन सब जीव, यानी अभी सब ले लिए, 128 भी लिए 16 भी लिए, यानी अभी हमारी संख्या 728 थी, अभी तो उसमें 16 और मिला दो, तो यवमध्य से लेकर अधस्तन सब जीव विशेष अधिक हैं। कितने अधिक है, तो जघन्य योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 728 + 16 744, ये आसान है ना बहुत, उसमें कुछ विशेष बात नहीं है। अब ये ऐसा ही अल्प बहुत ऊपर भी थोड़ा देखेंगे हम, परंतु ऊपर की संख्या अलग है उत्कृष्ट योग स्थान की। पहले नंबर वो 76 पेज निकालो, क्योंकि हमारे पास फिगर्स तैयार होगी तो समझना आसान हो जाएगा। देखो उसमें तो 128 से शुरुआत होती है और ऊपर घटते चला जाता है ना, तो उत्कृष्ट स्थान है 5 का, अब इसमें से उत्कृष्ट योग स्थान है, वो जीवों की संख्या 5 है और योग, हाँ योग मध्य वो 128 है, कौन से कितने जाते हैं वो तो कितने कम है, तो उत्कृष्ट जीवों की संख्या सबसे कम है वहां से शुरू करेंगे। अब 5 और 128 के बीच वाले सभी टोटल करनी हमको, तो देखो अभी यहाँ गुणहानियों में देखो, लास्ट गुणहानी जो 5 में एंड होती है उसकी संख्या 26 थी, उसके आगे 52 थी, उसके आगे 104, उसके आगे 208 और परंतु 416 में से 128 कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 128 को हमने अलग से बताना है। दो सौ अट्ठासी आ जाएगी, 288। समझ में आती बात ये? नहीं,
दो सौ अट्ठासी से ज्यादा हो जाएगा ना,
क्यों?
416 में 128 कम कर दिए प्लस
128 कम कर दो ना,
हाँ,
टोटल तो कितने आए वहाँ पर, कितने आए बीच में? अभी अभी संख्या कितनी आई उस कॉलम की? 8 × 7 = 14 नहीं, 8 × 8 = 16, 3 × 8 = 11, 2 × 2 = 288 है। अभी इन सबकी टोटल करना है, देखो मेरे पार्टी पर देखो,
288 प्लस 200
128 एक बाजू है, लास्ट में 5 है, बीच वाले सभी संख्याओं की टोटल करनी है। तो 128 से अगर शुरू करते हैं तो 128 के जुदा रखो और बाकी तीन जो संख्या है 112 96 और 80 उनकी टोटल आ जाएगी 288। समझ में आती है बात? मिला क्या आपको?
हाँ, बराबर।
हाँ, फिर उसके नेक्स्ट 64 56 48 40, उसकी
208।
आप जरा शांति रखो, 208 है। उसके बाद 32 28 24 और 20 मिलकर 104 होते हैं, 16 14 12 10 मिलकर 52 होते हैं, 8 7 6 और 5 मिलकर 26 होते हैं। अभी इन सबकी टोटल करेंगे,
पांच अलग से ले लेगा, पांच अलग से लेगा,
पांच अलग से लेना है, पांच को माइनस करना पड़ेगा, 26 के बदले वहाँ 21 ही लेना पड़ेगा, माइनस 5 करेंगे 663 आ जाएगी शायद, साले दो न छात्र चाहिए, 70 चाहिए, 673 में से 5 गए, 673। अभी हमारे पास फिगर्स है, एक बाजू 128, दूसरे बाजू 5 और बीच में सारे मिलकर 673। अभी हम अल्प बहुतो पढ़ेंगे, अभी तो आसान है ना। अभी आना पेज नंबर 96 पर, पहला नंबर है देखो। अब यव मध्य से आगे के अल्प बहुत्व का कथन करते हैं, यानी यव मध्य को लेकर आगे वाली बात। यथा उत्कृष्ट योग स्थान में जीव सबसे कम है, 5 है ना यहाँ पर, इनसे दो नंबर उन्होंने लिखा है ना ब्रैकेट में 5, इनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुणे, यव मध्य के जीव कितने हैं? 128 है। अभी 5 से 128 कितने गुना है, तो 128 बटे 5 करेंगे तो वो हमारे प्रमाण मिल जाएगा। तो गुणकार क्या है? यव मध्य से उपरिम सब गुणहानि शलाकाओं की, सब गुणहानि शलाका है अर्धच्छेद का असंख्यात भाग, कुछ कम अन्योन्य अवस्थ राशि गुणकार है कि जो पल्लोकों के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसका अर्थ समझ में आता है ना? अभी उसकी संदृष्टि अन्योन्य अवस्थ राशि 128/5। कुछ कम अन्योन्य अवस्थ राशि क्यों कहते हैं? अगर ऊपर की गुणहानियां 5 है, 5 बार 2 लिखेंगे तो 32 आ जाता है, अगर इसको 32 से गुना करेंगे तो क्या होगा? वो 4 का प्रमाण आ जाएगा। ये 4 से 128 कितने गुना होते वो है, 4 संख्या क्यों? क्योंकि आगे आगे वाले गुणहानि का पहले निषेक में वो डिफरेंस है, जैसे 16 से हमने 128 किया था तो 128 यहाँ अंतिम निषेक, यानी 16 से लेकर वहां तक हमने बात की थी, यानी प्रत्येक गुणहानि के पहले निषेक की वो कंपेरिजन कर रहे। यदि 4 के साथ प्रमाण निकालना था तो 4 × 32 हमको 128 आ जाते हैं, परंतु यहाँ 5 के साथ कंपैरिजन करना है
तो
32 से कुछ कम, क्योंकि 5 ये अंतिम निषेक है, उसके आगे निषेक नहीं है। आगे का निषेक 4 अगर होता तो उसको 32 ले लेते, अभी इसमें कुछ कम इतना ही लेना। अभी कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि, उसका प्रमाण तो हमें डायरेक्ट भागहार देने से मिलता है, 128/5। यानी वो 25 समथिंग आ जाएगा ना, ये कुछ कम 31 में 32 में कुछ कम। इससे उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों को गुणित करने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी 128 बटे 5 को 5 गुना करेंगे तो 5 5 चले जाएंगे, 128 रह जाएंगे। हाँ, ये अभी हमने पूरा पढ़ा, वो 2 नंबर था, यानी उसी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अभी 3 नंबर डालना है इसके आगे। इनसे इनसे ने 128 से यव मध्य से आगे के और उत्कृष्ट योग स्थान से पीछे के जीव असंख्यात गुने हैं। अभी हमने 673 उसकी संख्या निकाली थी। हाँ, ऊपर 5, नीचे 128 और बीच में 673 जीव है, तो ये उनकी संख्या है, वो असंख्यात गुने हैं। अभी उसका गुणकार क्या होगा? 673 बटे 128 करने से गुणकार मिलेगा। अब यथार्थ में क्या कहते हैं, देखो गुणकार क्या है? कुछ कम 1.5 गुणहानिया गुणकार है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है, क्योंकि 1 गुणहानि जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, तो उसे 1.5 गुना करना। उनकी संदृष्टि यह है 673 बटे 128, क्योंकि हमें 128 से वो कितने गुना है, तो उसको भाग दे दो, हमें डायरेक्ट मिल जाएगा भागा।
यहाँ पे 1.5 गुणहानिया ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग के पल्ले के असंख्यात विभाग हो जाएगी, क्योंकि टोटल पल्ले का असंख्यात विभाग है।
फिर से आप घोटाला कर रहे हैं।
नहीं, 1.5 गुणानी पल्ले गुणानी या कितनी है पल्ले का असंख्यात विभाग, तो 1.5 गुणानी भी पल्ले का असंख्यात विभाग होगी ना।
गुणहानि कहाँ पल्ले के असंख्यात विभाग है, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग 1 गुणहानि है।
अच्छा अच्छा, यहाँ पे 1 गुणानी का काम में टोटल गुणानी है, मित्र लगा
टोटल नाना गुणानी नहीं लेना है, 1 गुणहानि को 1.5 गुना करना है।
ओके,
आप स्वयं ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं।
नहीं नहीं, बराबर है।
यहाँ लिखा ना, कुछ कम 1.5 गुणहानि है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण है, और उसकी संदृष्टि बताई। इससे यव मध्य को गुणित करने पर, यानी 673 बटे 128 को 128 से गुणा करने पर विवक्षित द्रव्य का प्रमाण प्राप्त होता है, 673 आ जाएंगे। अब 4 नंबर डालना है। इनसे यव मध्य से आगे के जीव विशेष अधिक है, यानी हमने 673 से उसके आगे के, यानी वो 5 नंबर उसमें मिला देना, यानी 678 हो जाएंगे। कितने अधिक है? तो कहते उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। ब्रह्मा इसके आगे जो लिखा है उसको अब करेक्ट करना चाहिए, वहाँ वो पूरा निकालना, 63 + 75 वो निकाल दो, उसके बदले 673 + 5 करना। वो फिगर सब उल्टा पुल्टा कुछ हो गया है, बाजू में लिखो 673 + 5। 678 उन्होंने उसका उत्तर बराबर लिखा है। ये तो आसान है ना समझने में, 673 से 678 कितने ज्यादा है, उसमें 5 मिला दो, इतने ज्यादा है। अब 5 नंबर पर अनुत्कृष्ट योग स्थान के जीव, अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट कौन से थे? 5। अनुत्कृष्ट ने 5 को छोड़ो और 128 को मिला दो। तो अभी हमने 678 निकाला था, उसमें 5 कम कर दो, तो 673। हाँ हाँ, उसको 5, 673 आ जाएंगे, उसमें 128 मिला दो। हाँ, तो क्या आएंगे? 801 आ जाएंगे। तो उनकी भाषा में है, तो उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों के प्रमाण से हीन यव मध्य के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक। अधिक कितने उनका प्रश्न था, तो 123 ज्यादा है उसमें, तो कहते 801 उसका उत्तर आ जाएगा। टोटल कितने हैं? तो 801 हो जाते हैं। अब 6 नंबर डालो। इनसे अभी सभी पूरे योग स्थान ले लेंगे, 5 को भी माइनस किया था उसको भी मिला देंगे, तो 601 में 5 भी मिला देंगे। इनसे यव मध्य को लेकर आगे के सब योग स्थानों के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 801 प्लस 5 806 हो जाएंगे। समझ में आते हैं बात? अब तीसरा अल्प बोध बता रहे हैं। अब यव मध्य से अधस्तन और उपरीम योग स्थानों के अल्प नहीं छह छह ही आएंगे ना, उसमें ज्यादा कैसे नहीं छह ही आए थे आपने भाई बीच में देखो 95 पेज पर सेकंड लाइन में एक नंबर लिया, फिर उसके नीचे के लाइन में दो नंबर लिखा, फिर 108 के बाद यानी तीन यव मध्य से अधस्तन वहां से तीन नंबर है, अब 616 तीन हाँ चार नंबर है, उसके नीचे दो लाइन है 600 के बाद उससे यव मध्य से वगैरह, उसके एक लाइन छोड़कर उसके नीचे पांच नंबर है और लास्ट लाइन है उनकी अपेक्षा वहां छह नंबर है, छह ही हो गए ना। अब दोनों की दोनों ओर को मिलकर कथन होगा सब योग स्थानों के बाद। कहते उत्कृष्ट योग स्थान के जीव सबसे स्तोक है, वो पांच वाले कहाँ गए ये पांच, हाँ अभी उनसे ज्यादा कौन से हो गए हैं जगन्य 16 हाँ, उनसे जगन्य योग स्थान के जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? जगन्य योग स्थान सदृश उपरिम जीवों की उपरिम सब गुणहानि शलाकाओं की कुछ कम अन्योन्य व्यस्त राशि गुणकार है, जो कि पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। अन्य व्यस्त राशि वहां पर भी है, यानी उसमें इतने स्थान चले जाएंगे। यह क्या कहना चाहते हैं? डायरेक्ट हम ऊपर के नीचे कितने गुना है तो 16 डिवाइडेड 5 कर दो। उन्होंने किसके पद्धति से कहा? यव मध्य है 128 का, ऊपर घटते चले जाते हैं और लास्ट स्थान है 5 का। अभी वहां 16 का ऊपर स्थान कहाँ पर था देख लो, आपको 76 पेज देख लो। देखो पांच से उल्टा देख लो, पांच है अंतिम गुणहानि का अंतिम निषेक है और 16 है उसके पूर्व गुणहानि का, हाँ प्रथम निषेक है। अभी यहाँ तो इमीडिएट नेक्स्ट गुणहानि में है उसका पांच बताया, पर यहाँ बीच में भी असंख्यात गुणहानियां चली जाएंगी, तो जितनी गुणहानियां बीच में चली जाएंगी उसकी अब अन्योन्य व्यस्त राशि निकालो। और कुछ कम इसलिए करना कि क्योंकि वो 8 के साथ 16 की कंपैरिजन नहीं हो रही है, 5 के साथ हो रही है, इसलिए क्या लिखा देखो, फिर मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। है तो नीचे का, पर ऐसा ही 16 का स्थान ऊपर भी है ना, क्योंकि हमने क्या देखा नीचे एक गुना नहीं ऊपर, वो तो सदृश सदृश होते हैं ना, 128 बीच में है दोनों ओर घटते जाते हैं, तो जैसे 16 का स्थान नीचे है ऊपर भी 16 का स्थान है, उसके साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल आसान है। नीचे के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? उसका प्रमाण निकालने के लिए ऊपर जो 16 जिस गुणहानि में है वहाँ के ऊपर उत्कृष्ट स्थान कितने गुणहानियों में जाकर होता है, तो वहाँ के अन्योन्य व्यस्त राशि देना और उससे उसको गुणा करना। यह हमारे उसमें फिट नहीं होगा वो, कि हमें इसमें तो इमीडिएट नेक्स्ट गुणहानि में वो बात होती है और यहाँ फिट करना है, तो एक ही गुणहानि का डिफरेंस है और कुछ अधिक होता है गुणहानि से, कुछ अधिक होता है या दो गुणहानि से कुछ कम होता है, दो गुणहानि हो जाए तो चार हो जाएंगे और एक गुणहानि तो गुना दो करना पड़ेगा, तो एक गुणहानि गुना दो उससे ज्यादा होगा, दो गुणहानि से कम होगा, चार से कम और दो गुना से ज्यादा, इस तरह से वो संख्या आएगी। तो 16/5 5 3 15 आती है ना, चार से कम है दो से ज्यादा, दो गुना से ज्यादा चार गुना से कम, आया ना यहाँ पर भी फिट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ तो बस दो का डिफरेंस है दो गुणहानियों का और वहां तो एक्चुअल में असंख्यात का है। तो वहाँ की जितनी अन्य अन्य भस्य राशि होगी
जो पल्ली पंप के असर के साथ
अभी फिट वॉइस है। देखो फिर से पढ़ती हूँ तीसरी लाइन। गुणकार क्या है? जघन्य योग स्थान सदृश, सदृश 16 का जघन्य योग स्थान तो है ही, ऊपर भी 128 घटते घटते कहीं पर 16 हो जाएगी, तो उसके सदृश यानी उसके समान उपरिम जीवों की, उपरिम सब गुणहानी शलाकाओं की, यानी 16 स्थान के ऊपर के कुछ कम अन्योन्य वस्त्र राशि गुणकार है, जो कि पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यानी उत्कृष्ट स्थान से ये 16 वाला जघन्य स्थान पल्ले के असंख्यात पे भाग गुणा है, उसकी संदृष्टि यह है 16/5। समझ में आए विवाह? इससे उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों को गुणित करना, जीवों का उनकी संख्या को गुणित करने पर जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। 16/5 को 5 गुणा करेंगे तो 16 आ जाएंगे। अब यहाँ तक तो दूसरा पॉइंट समाप्त हुआ। अब तीसरा, इनसे यवम मध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? देखो हमारे पास जो हमने पहले दोनों ओर किया थे, हाँ तीसरा, नीचे 16 थे, ऊपर 128, सबसे ऊपर 5। 128 और 16 के बीच वाले जीवों की संख्या कितनी निकाली थी याद है? 600 थी। और यहाँ पर बीच में कितनी थी? 673 थी। अभी इन सब में अल्पभूत चल रहा है, अभी उसमें कभी इसको छोड़ेंगे, बाकी से लेंगे, ये सब उल्टा पुल्टा सब करके देखेंगे। तभी तीन नंबर का पॉइंट, इनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं। किनसे? 16 से। गुणकार क्या है? जघन्य योग स्थान के सदृश जीवों के नीचे की और यव मध्य के जीवों के ऊपर की सब गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्य राशि गुणकार है, जो कि पल्लोपम के असंख्यात पे भाग प्रमाण है। अभी तो ये आसान है ना। अब जघन्य योग स्थान नहीं कहकर ऊपर का ही लिया, क्योंकि हम ऊपर से गिन रहे थे, 5 से 16 को देखा, अभी 16 से 128 को देखना है। उसकी संदृष्टि 8 है। इससे जघन्य योग स्थान के जीवों को गुणित करने पर यव मध्य के जीव होते, 16 × 8 करने पर 128 होते हैं। अब चार नंबर डालना, इनसे यव मध्य से नीचे के और जघन्य योग से आगे के जीव असंख्यात गुने। अभी 128 से 600 कितने गुना है वो बताए। गुणकार क्या है? कुछ कम 1.5 गुणहानिया गुणकार है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग मात्र है। 75/16 जो हमने पहले भी इसकी संदृष्टि देखी थी, इससे यव मध्य को गुणित करने पर विवक्षित द्रव्य का प्रमाण होता है। 75/16 को 128 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएंगे। अब पांचवा नंबर यहाँ डालना, इनसे यव मध्य से नीचे के जीव विशेष अधिक है।
16
कितने अधिक है? जघन्य योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 600 में 16 मिला है तो 616 हो गए, क्योंकि 673 के पहले हमने इसकी यहाँ देखी ना, 16 मिलाकर हमारी बात हो गई। इनसे यव मध्य से आगे के और उत्कृष्ट योग से नीचे के जीव विशेष अधिक है। हाँ, वो दोनों, हाँ 673 हमने देखा था, 616 से 673 कितने, एक मिनट, कितने अधिक है? 98 पेज पर आना। जघन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित, जघन्य को भी छोड़ा, उत्कृष्ट को भी छोड़ा, अंत की 2 गुणहानियों के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। देखो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ क्या कहा? जघन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित, 16 को भी छोड़ा और 5 को भी छोड़ा है। देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी 600 से ये 673 कितना अधिक है? 600 से 673 कितना अधिक है? हमको डायरेक्ट यहाँ तो हमें 673 माइनस 600 कर सकते हैं, तो ये 73 संख्या कहाँ से लाई? तो उसके लिए क्या तरीका है वो बोल रहे हैं। फिर से देख रहे हैं, यहाँ पर जघन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित अंत की दो गुणहानी, अंत की दो गुणहानियां देखो आपके टेबल में देख लो, दोनों ओर की अंत की गुणहानी।
अच्छा, ये दोनों
जघन्य की ओर देखो, जघन्य की ओर जो 16 20 24 और 28 था उसमें से 16 को छोड़ो, एक मिनट, जघन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवन से रहित अंत की दो गुणहानियां, अंत की दो गुणहानियां लेना, वो नीचे की नहीं लेना,
ये
ऊपर की अंत की दो लेना।
52 और 26
देखो देखो, यानी 16 14 12 10 है ना, वो अंतिम दूसरी अंत से दूसरी है, पेज वो टेबल देखो, अंत की दो गुणहानियां लेना, नीचे और ऊपर की नहीं लेना, अंतिम दो का एक उत्कृष्ट की तरफ। देखो 16 14 12 10 8 7 6 5 उसमें 16 को छोड़ो और 5 को छोड़ो, यानी पहले उसकी दोनों की टोटल करके उसमें से 16 और 5 21 माइनस करो तो भी चलेगा। 16 वाली गुणानी ने 16 14 12 10 उसकी टोटल होती है 52 और इसकी होती है 26 और उसमें से हमको 16 और 5 कम करना है,
52
और 26 की संख्या होती है 78, उसमें 21 माइनस करना है। ख्याल में आई बात? यहाँ लिखा है देखो, फिर से पढ़ती हूँ मैं, जघन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित अंत की दो गुणहानियों के द्रव्य का जितना प्रमाण है, क्योंकि देखो क्यों ऐसा कहा उसकी भी बात देख लो, 128 के नीचे 16 तक आओ और 128 के 600 से 673 कितना ज्यादा है? फिर से देखो, आप वो टेबल निकालो, अभी हम 600 कहाँ है, बीच में 128 छोड़ो, उसके पूर्व की 16 छोड़कर जो संख्या है और उसके आगे की 16 को छोड़कर उसके पूर्व तक जो संख्या है वो दोनों और समान है कि नहीं? यहाँ 112 वहाँ 112, 196 196 80 80 64 64 वो सब, हाँ यहाँ 16 को हमको 16 और 128 के बीच में 600 थे और वहाँ पे ऊपर की ओर 128 से लेकर 16 के बीच में भी 600 है, उससे आगे की संख्या कितनी ज्यादा है ये संख्या बताना है, ये नहीं तो 16 के आगे वाली संख्या कितनी है उसको निकालना है, 5 को छोड़ना और 16 और 5 के बीच वाली आगे की संख्या निकालना है। लास्ट दो कॉलम है ना, उसमें 16 को भी छोड़ो और 5 को भी छोड़ो और उनकी टोटल करो तो संख्या 73 आती है। समझ में आई बात? ये क्यों किया उसका समझ में है ना, क्योंकि नीचे जैसे 600 है 128 से 16 तक, वैसे ऊपर भी 600 थे तो उसके आगे जाना है हमको, तो 16 को छोड़ो और उत्कृष्ट स्थान 5 को भी छोड़ो बीच में वाले, तो उतने अधिक है, 616 प्लस 78 माइनस 21 673 हो गए। अभी 7 नंबर डालो, इनसे यव मध्य से आगे के जीव विशेष अधिक है। अब केवल ऊपर के सब लेना, 5 को लेकर उस पूरे क्या कहा आगे के ने 100, अभी उसमें भी 128 मत लेना, केवल आगे के यानी यव मध्य से लेकर, अभी हमने 673 तक आ गए थे, 673 क्या है, 128 को छोड़कर आगे के यानी उत्कृष्ट योग स्थान और 128 इसके बीच में सब जीव है 673, उसमें 128 को छोड़ो, आगे के सभी मिलाने तो 5 उसमें मिला दो, उसका अर्थ क्या है? इनसे योग मध्य से आगे के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। यानी 673 में केवल 5 मिला दिए। फिर से हमारे टेबल में 128 को छोड़ो, अभी हमने देखा ना यही अपना है। ऊपर 5 है, सबसे नीचे 16 है, बीच में 128 है। नीचे के दोनों के बीच में 600 थे, ऊपर दोनों के बीच में 673 थे। अब प्रश्न क्या है, 128 के ऊपर सब मिलकर कितना है? तो 673 और 5 678। तो उत्कृष्ट स्थान की जितने उतने अधिक है। अब इनसे 8 नंबर पर अनुत्कृष्ट जीव विशेष अधिक है। अनुत्कृष्ट किसको कहेंगे? जो उत्कृष्ट नहीं वो सारे अनुत्कृष्ट। हाँ, 5 को छोड़कर सब। तो कहते इनसे अनुत्कृष्ट जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित यो मध्य के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। यानी 600। देखो अनुत्कृष्ट किसको कहा? जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट। जो उत्कृष्ट क्या है? 5 है। उसके उसको छोड़कर 128 तक सब जीवों की संख्या, उसको मिलाना है। यानी 678 में 5 माइनस करो और 128 मिला दो तो 801 हो जाते हैं। अब 9वें पॉइंट पर इनसे यव मध्य से लेकर आगे के सब योग स्थानों के जो विशेष अधिक है। 5 को निकाला था, अभी 5 को मिला दो। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 801 प्लस 5 806, यानी 128 से लेकर 5 तक की ये सभी संख्या 806 आ गई। अब कहेंगे जब अनुत्कृष्ट कहे कि तो नीचे के स्थान क्यों नहीं किए लिए? तो समान स्थान है, उसको अलग से क्यों कहेंगे? इसलिए नीचे की बात ही नहीं की अनुत्कृष्ट में। अब 10वें नंबर पर सब योग स्थान के जीव विशेष अधिक है। ये 806 हो गए और उनमें सब जीवों के नीचे से 616 उसमें मिला दो तो डबल तो नहीं होते, इसलिए उसको विशेष अधिक कहेंगे। सब योग स्थान के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? हाँ, उसी पेज पर बात चल रही है। देखो हमने 10 नंबर डालना है लास्ट में, 806 लिखे उसके आगे सब योग स्थान के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक? पूरा सब लेना, नीचे के 16 से लेकर ऊपर के 5 तक। तो यो मध्य के नीचे के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, क्योंकि हमने 128 से 5 तक तो गिने थे, उसमें नीचे 600 और 16 सब मिला दो तो 806 में 616 मिले, 1422 हो गए। हमने जो माने थे पहले वही संख्या आ गई। हाँ, सभी योग स्थानों में मिलकर जीवों की संख्या, जो त्रस पर्याप्तों की टोटल संख्या आती है। अभी इसमें डिराइव क्या करें? इसलिए यव मध्य से नीचे के स्थान से, नीचे के जितने स्थान है 600, क्योंकि नीचे 3 गुनाहियां थी, नीचे के स्थान से आगे का नहीं, आगे के स्थान विशेष अधिक है यह सिद्ध हुआ। नीचे क्योंकि जीव को अधिक योग में रखना था तो उनके ऊपर के योग, देखो भले जीवों की संख्या नीचे ऊपर समान है पर ऊपर योग ज्यादा ज्यादा है। हाँ, क्योंकि नीचे मिनिमम से मैक्सिमम तक हम ऊपर चढ़े गए हैं तो ऊपर योग की कितनी है कॉलोनी, उसके अभिभाग प्रतिच्छेद तो ऊपर ऊपर ज्यादा ही होगे, और इसको ऊपर के योग स्थानों में अधिक काल तक रखना है। तो कहते अगर वो तो जीव यव मध्य लेते तो उसमें विशेष अधिक है तो पूरे अंतर्मूर तक वहां नहीं रह सकते, ये कहना था उनको। इसलिए काल यव मध्य लिया था उन्होंने, मूल से वहीं से बात शुरू हुई थी आरंभ। यहाँ फिर वही कह रहे हैं, इसलिए यानी उन्होंने पूरा करके प्रूव किया कि जीव यव मध्य से नीचे के स्थान से आगे के स्थान, आगे का नहीं आगे के स्थान विशेष अधिक है की बात है। यह सिद्ध हुआ। अतएव यहाँ चूंकि अंतर्मूर्त काल रहना संभव नहीं है, कहाँ ऊपर, अकेले ऊपर ही ऊपर, इसलिए काल योग मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक रहा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ये कहाँ से, ये 57 पेज से निकलो, 57 पेज निकालो।
तो यहाँ पे इसे बताना, जीव
जरा जीव लोगों को पहले सुनने दो। देखो यहाँ क्या कहते हैं, 28 नंबर का सूत्र था, इस प्रकार परिभ्रमण करके, यानी वो जो नारकी था अंत में आया था, जीवन के थोड़ा शेष रहने पर योग योग मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक स्थित रहा। समझ में आई ना? तो वो फिर प्रश्न पूछा था कि जीव योग मध्य को क्यों नहीं लिए, ये प्रश्न था उनको। तो पहले में पहले यवाकार कैसे हो सकता है, ये प्रश्न पूछा था। यवाकार किसके लिए पूछा था वहां पर, देखो देखो क्यों, क्योंकि जगन्य योग स्थान से ले रहे, उसमें ना काल योग मध्य लेना ना जीव योग मध्य लेना, तो उन्होंने तो पूछा था कि योग मध्य पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जगन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट योग से योग थोड़ा 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 बढ़ता हुआ इस तरह से बढ़ेगा, ये उत्कृष्ट योग है। कहीं जाके दुगुना होगा उससे, कहीं जाके दुगुना होगा उससे, कहीं जाके योग दुगुना होगा। तो कहते नीचे से लेकर ऊपर तक तो पढ़ना ही बढ़ना है, तभी तो जगन्य और उत्कृष्ट योग योग स्थान अलग बात है, और यव मध्य में ही उनके स्थान अलग है। देखो तीन बातें अभी आएगी, केवल योग स्थान कहने से जगन्य से उत्कृष्ट तक तो योग बढ़ते ही चला जाएगा, स्टीप राइज। काल यव मध्य में इन्हीं स्थानों में काल की अपेक्षा मध्य के कुछ स्थान काल 8 समय तक है, नीचे वो 4 समय तक चले जाते, ऊपर 2 समय तक चले जाते, और उनके स्थान वो असंख्यात गुने असंख्यात गुने। जीव योग मध्य में बीच में 128 संख्या कहीं पर, नीचे 16 तक जाती है, ऊपर 5 तक जाती है। यानी ये तीन बातें अलग अलग है, इनमें अगर कंफ्यूजन करेंगे तो कुछ नहीं समझने वाला है पुस्तक में, क्योंकि सेम शब्द आएंगे यहाँ पर भी गुणहानीय कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो योग बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, जो 2 गुना हो जाएगा तो 1 गुणहानी होगी, 2 गुना होगा तो 2 गुणहानी योग में होगी। अब यहाँ काल योग मध्य कालों की यानी कितने समय तक वो रहता है उसकी बात करेंगे, और उसमें जीव कितने हैं और उसके स्थान कितने हैं, जीव योग मध्य में वहाँ जीव कितने हैं, तो ये तीन बातें अलग अलग है, तो उनकी कंपैरिजन कहीं कहीं होगी। तो शब्दों को बहुत अच्छी तरह से हमको अगर नहीं समझेंगे तो ये कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो वहां ये पूछा था कि योग योग मध्य पॉसिबल ही नहीं, उसके बाद उन्होंने योग योग मध्य होता है इसलिए काल योग मध्य को भी बताया, और 61 पेज से जीव योग मध्य क्या है उसकी चर्चा चली थी। अब यहाँ आते हैं पेज नंबर 98 पर। अभी क्या उन्होंने प्रूव किया, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, कि इसलिए जीव योग मध्य से नीचे के स्थान से आगे के स्थान विशेष अधिक है यह सिद्ध हुआ। यानी 128 के नीचे के स्थानों से ऊपर के स्थान विशेष अधिक है,
ये
गुणा में उसका नहीं है प्रमाण, गुणित प्रमाण नहीं है, विशेष अधिक में है। हाँ, अभी आपका प्रश्न
योग मध्य में लेना है ना, नीचे के स्थान से आगे के स्थान विशेष अधिक है।
हाँ, जीव योग मध्य के चाहिए, जीव योग मध्य के मध्य से ने जीव योग मध्य एक्चुअली बरोबर है, जीव मध्य से नीचे के स्थान से, यानी 128 से नीचे के,
तो ये
वो जीव यवाकार नहीं कह रहे, जीव योग मध्य में नहीं, 128 में नहीं बात हो रही है, 128 से नीचे के स्थान और 128 से ऊपर के स्थान, ये उसका अर्थ है, लिखा है बराबर है। इसलिए जीव योग मध्य से नीचे के स्थान से आगे के स्थान विशेष अधिक है यह सिद्ध हुआ। यानी 128 के नीचे के सब स्थानों से 616 होते हैं, ऊपर के सब स्थान विशेष अधिक है, यानी वो 678 हो जाते हैं, 616 से 678 विशेष अधिक है। यहाँ लिखा ना जीव यव मध्य कितना, 128, उसके नीचे के स्थान कितने हो गए, नीचे के स्थानों से, टोटल स्थान कितने हो गए हमने, नीचे के स्थान कितने हुए, 616 हो गए थे, तो 616 से आगे के स्थान कितने हो गए,
678
विशेष अधिक है, यह सिद्ध हुआ। ख्याल में आई बात, यहाँ से यो मध्य में तो एक स्थान है, एक स्थान हाँ? जीव मध्य से यानी एक स्थान, जीव यो मध्य का एक स्थान, वो कौन सा, 128
वाला,
यानी वो 128 वाले एक स्थान से नीचे के सब स्थान कितने हैं, 616, और उसके आगे के स्थान कितने हैं, 678। अभी हमने जो निकाले थे विशेष अधिक है, यह सिद्ध हुआ। यहाँ तक बात ख्याल में आई, अतएव यहाँ चूंकि अंतर्मूर्त काल रहना संभव नहीं है, ये उसका कथन है, इसीलिए काल योग मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त काल तक रहा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ जीवों की संख्या की अपेक्षा बात थी योग मध्य की, वो बात अलग है, और काल की अपेक्षा जो रचना बताई थी वो बात अलग है। वहां तो नीचे के स्थानों से ऊपर के स्थान असंख्यात गुणा है, तो वहां वो रह सकता है। विशेषार्थ, यहाँ यव मध्य से जीव यव मध्य का ग्रहण होता है या काल यव मध्य का, इसी प्रश्न का निर्णय कर यह बतलाया गया है कि प्रकृत में यव मध्य पद से काल यव मध्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीव यव मध्य के उपरिम भाग में अंतर्मूर्त काल तक रहना संभव नहीं है। एक सूत्र के लिए उन्होंने 75 से लेकर 98 तक उस एक सूत्र को उन्होंने, क्योंकि हमारी बात वो गुणित कर्मांशिक की चल रही थी, और उसको पहले बादर एक इंद्रियों में घुमाया, कर्म स्थिति माइनस त्रस स्थिति प्रमाण काल तक, और फिर त्रस में लाया, वो सारे कंडीशन 6 आवाज बताए वो हो गए, अंत में नारकी भाव में आए, उसमें भी बहुत बार नरक में, वो सब कंडीशन लगा लेना। अब नारकी का अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर काल एवं मध्य संबंधी जो ऊपर के स्थान है उसमें अंतर्मूर्त तक रहा, ये यहाँ ये कंडीशन पूरी हुई। अब आगे के कंडीशन और बताएंगे। कंटा लागे?
नहीं नहीं कंटा लागे,
दम काट ला।
क्या बताया अरविंद भाई?
दम काट ला। आचार्यों को कितना कितना सब, और उसको कंपेयर करके बताना। हाँ नहीं नहीं, बहुत बहुत सरल कर, बहुत सरल कर दिया, हमारा अभ्यास नहीं है इसलिए वो कठिन होता है, कठिन होता है तो अरुचि हो जाती है ना। मुझे तो जब जब कठिन गणित वगैरह आता है ना तो और ज्यादा जोर आता है कि क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं समझे। अरे हमारे लिए तो लिख के गए है ना, और क्यों नहीं समझे।
उन्होंने कितनी मेहनत की है समझाने के लिए।
हाँ तो वही तो, फिर भी उसमें तो हमें समझ में आवे इस तरह से, उसको कितना डिटेल करके लिखना है, उनको कितना लिखना पड़ा उनको इतना, और ये तो फिर भी मूल सूत्र में इतना लिख दिया उन्होंने, मूल में ही वीरसेन स्वामी ने उसके ऊपर कितनी मेहनत की है, इतना सरल किया है। वहां तो केवल सूत्र सूत्र रूप से रचना थी, भूतबली और पुष्पदंत आचार्यों ने तो सूत्रों की रचना की है, उनको तो कितना उसमें सूत्रों से मालूम था, मतलब सूत्र में वो रख देना इतना सब, वो एक सूत्र रूप से रचना करना, फिर आगामी जो उनके आगे जो आचार्य हो तो परंपरा से वो उपदेश तो चलता आया ना, उनका अभ्यास भी था और उसकी प्ररूपना भी होती रही, तब जाके किसी को विकल्प आया कि इसको भी लिखित रूप से करेंगे, तो वीरसेन स्वामी ने उसको लिखित रूप से लग दिया। अरे उनके उपकार है हम उनके लिए, तो ये तो एक अंतर में स्थिरता नहीं थी तो ये तो शुभ भाव है, वो भी स्वभाव के लक्ष्य से होता है, और उनके लिए वो राग द्वेष रही थी, यही तो गणित में भी उनका उपयोग वहाँ रहता है कॉन्सेंट्रेटेड, और वहाँ कोई अन्य चीजों का कुछ है ही नहीं है, इसलिए तो उनके लिए तो ये सब असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का कारण बताया है। उनमें समझना हमको, अंतरंग में स्थिरता उनकी उतनी अधिक बढ़ती है, क्योंकि उपयोग की जितनी सूक्ष्मता है उतना अधिक कॉन्सेंट्रेशन रहता है, और करना तो अपने स्वरूप में स्थिरता ही है। क्योंकि देखो हम अपना ही देखें, अपना उपयोग इतने, क्योंकि समझने के प्रति हमारा इतना उपयोग लगा है, क्योंकि उसको डिराइव करने के प्रति, तो क्या दुनिया में चल रहा है कि उसका विचार तक नहीं आता है, है ना। अभी 29 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे, 98 पेज। चरिमे जीव गुणहानि ठाणंतरे, अभी ये जीव गुणहानि स्थान लेना, अंतिम जीव गुणहानि स्थान। आवलियाए असंख्य यदि भागमच्छिदो, तो ये जीव यौ मध्य की अपेक्षा जो अभी हमने रचना देखी, वो अंत जो जीव गुणहानि है उसमें, क्योंकि वो पांच की तरफ वाला आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक रहा है। यह लिखा नीचे, अंतिम जीव गुणहानि स्थान में आवली के असंख्यात में भाग काल तक रहा। शंका 99 पेज पर, अंतिम जीव दुगुण वृद्धि में अंतर्मूर्त काल तक क्यों नहीं रहा? दुगुण वृद्धि कहो या गुणहानि कहो, एक ही बात है। क्या कहा? यहाँ क्या लिखा था? अंतिम जीव गुणहानि स्थान में आवली का असंख्यात भाग है, तो उनका प्रश्न है वहां अंतर्मूर्त तक क्यों नहीं रहा, ये उनका प्रश्न है। क्योंकि यहाँ लिखते समय जीव गुणहानि लिखा और यहाँ दुगुण वृद्धि का, बात एक ही है। दुगुण वृद्धि कहने से भी उसको गुणहानि ही कहेंगे, तो वहां अंतर्मूर्त क्यों नहीं रहा, केवल आवली का संख्यात विभाग क्यों रहा, ये प्रश्न है। गुणहानि के लिए दुगुण वृद्धि कहते हैं, संख्यात भाग हानि वहां होगी नहीं, एकमात्र असंख्यात भाग वृद्धि और हानि होगी वहां पर। देखो क्यों नहीं रहा, समाधान नहीं, क्योंकि वहां असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि नहीं पाई जाती। यदि कहा जाए असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि के बिना भी अंतर्मूर्त काल तक रहता है, सो भी बात नहीं है। क्योंकि क्या कहते हैं, ये अविभाग प्रतिच्छेदों में गिन रहे हम, और अंतिम जीव गुणहानि ने हम जो दो देखा था ना, पांच छह सात आठ वाले चार स्थान हमने देखे थे, वो चार स्थान को हम कहेंगे, चारों को, ये जीव की अपेक्षा, जीव यौ मध्य की अपेक्षा वो अंतिम गुणहानि है, उनके जीव अंतिम गुणहानि है, तो उसमें रहने का काल, तो वह जो अंत के जो उत्कृष्ट की तरफ के जो स्थान है, तो उसमें योगों का जो डिफरेंस है, एक गुणहानि में योगों का डिफरेंस कितना हो सकता है एक गुणहानि में, क्योंकि गुणहानि किसको कहते हैं, तो जो योग थोड़ा बढ़ा, दूसरा निषेक कहलाएंगे, थोड़ा बढ़ा, योग स्थानों की बात है, योग के स्थानों की बात है, जीव कितने भी उसके बाद छोड़ दो, जीव की अपेक्षा जो अंतिम गुण जीव गुणहानि है उसमें योग स्थान जितने हैं, कितने यहाँ योग स्थान हमने चार माने थे, किसी स्थान में आठ जीव है, किसी में सात है, किसी में छह है, किसी में पांच है, वो जीवों की अपेक्षा उसके तो गुणहानि वाले बताए, पर वहां जो हम योग स्थानों की लाइन देखते, जो हर वर्टिकल लाइन हमने देखी थी, वहां वाला जो योग स्थान है, उसके आगे वाला जो योग स्थान है, उसके आगे वाला जो योग स्थान है, उसमें योग कैसा है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा है, वो असंख्यात गुणा वाला वहां, यानी थोड़ा ज्यादा होते होते दो गुना होता है, कहीं थोड़ा ज्यादा होते होते दस गुना हो जाता है, असंख्यात गुना होता है, ऐसी वो बातें वहां संभव नहीं है, क्योंकि वहां इतने स्थान नहीं है। अब यही बता रहे हैं, समाधान पूरा पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा आपको, वहां असंख्यात गुण वृद्धि, तो असंख्यात गुणा वृद्धि यानी किसी एक स्थान पर अन्य एकदम ऊपर के स्थान में चले जाओ तो असंख्यात गुणा होगा क्या योग स्थान, तो कहते नहीं हो सकता, कितना भी आगे चले, अभी दो गुना भी नहीं हुआ तो असंख्यात गुणा काहे से होगा, योगों की अपेक्षा दो गुना है कि नहीं ये कहना है, जीवों की अपेक्षा वो थोड़ा अधिक हो गए हैं, परंतु योगों की अपेक्षा बात करेंगे तो कहते कि असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण नहीं होती, और कहते यदि कहा जाए कि असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुणहानि के बिना भी अंतर्मूर्त काल तक रहता है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का तथा इन तीन हानियों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, ऐसा वचन है। यानी अगर असंख्यात गुण वृद्धि और हानि को छोड़े असंख्यात गुणा वाली, उसके बिना अंतर्मूर्त काल संभव नहीं है कह रहे। हेलो 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 हाँ क्या कहते हैं फिर से असंख्यात भाग अन्य तीन। देखो योगों में चार ही वृद्धि हानि संभव है, कर्मों में हम अनंत गुणों की बात करते थे, वो यहाँ अच्छे गुणों वृद्धि हानि होती, वो यहाँ नहीं है, यहाँ चार ही होगी। क्योंकि असंख्यात को हम अनंत से भाग नहीं दे सकते, गुणा नहीं करेंगे, वो असंख्यात तक ही होगा। यानी संख्यात पहला में पहला असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा, ये चार वृद्धियां या चार हानियां संभव है योगों में। परंतु अंत की तरफ जब हम जीव गुण हानि की अपेक्षा अंतिम स्थान में चले जाते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या किया उन्होंने कि जहां वो नीचे की तीन वृद्धियां हानि है असंख्यात गुणा को छोड़कर, उसमें वो अंतर्मूर्त काल तक नहीं रह सकता। यानी अंतर्मूर्त के लिए उसको असंख्यात गुण वृद्धि वाला वहां स्थान होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लगातार असंख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि, असंख्यात गुणा वृद्धि, इतने स्थान भी तो चाहिए ना। यानी जघन्य उसमें से जो जघन्य से लेकर कुछ स्थान छोड़कर ऊपर चला गया, एक साथ वृद्धि कितनी हुई? संख्यात गुणा भी हो सकती है, असंख्यात गुणा भी हो सकती है, परंतु उसके लिए वो स्थानों की रेंज उतनी होगी तभी तो। क्योंकि जिस स्थान पर असंख्यात गुणा तक पहुंचा, उस स्थान के ऊपर असंख्यात गुणा जाकर दूसरा स्थान होगा तब उसमें चला जाएगा, उसके ऊपर कोई असंख्यात गुणा वाला कोई स्थान, कितने स्थान बीच में जम करके जाना पड़ेगा और इतने स्थान उसमें नहीं है, ये कह रहे। तो ऐसा होगा तो ही अंतर्मूर्त तक उसमें रह सकता है। फिर से देखो, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का तथा इन्हीं तीन हानियों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, ऐसा वचन है। यानी ये तो नियम है, पर अंतिम जीव गुण वृद्धि में, यानी अंतिम जीव गुण हानि में, लास्ट वाली वो पांच छह सात आठ वाली, असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि, ये दो ही स्थान होते। क्या कहा? वहां संख्यात गुणा भी नहीं होता, संख्यात भाग वाला भी नहीं वहां पॉसिबल, केवल असंख्यात भाग, असंख्यात भाग, असंख्यात भाग के वहां कुछ स्थान है। शेष वृद्धि हानियां वहां नहीं होती, नीचे के तीन मिलकर भी अंतर्मूर्त नहीं हो सकता, तो वहां तो केवल एक ही स्थान है, कौन सी? असंख्यात भाग वृद्धि वृद्धि वृद्धि, क्योंकि थोड़ा अधिक एक जो स्थान है वहां का, दूसरे स्थान में योग थोड़ा ज्यादा है, योग थोड़ा ज्यादा है, योग थोड़ा ज्यादा है, योग थोड़ा, इन्हें असंख्यात वा भाग ज्यादा ज्यादा है, फिर भी वो टोटल असंख्यात भाग वृद्धि होती है। किसी भी उसमें जो कुछ है जघन्य उत्कृष्ट, उसमें भी डिफरेंस कितना है? असंख्यात वा भाग ही ज्यादा है, ये कहना चाहते वहां पर। इसलिए वहां आवली के असंख्यात भाग काल तक ही रहता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। समझ में आई नहीं ये बात? जितना कुछ समझते उतना समझो पापा। अब शंका, वहां असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है, अन्य वृद्धि हानियां नहीं होती है, किस प्रमाण से जाना जाता? ये पहले पूछा। समाधान, यह बात युक्ति से जानी जाती है, यथा, यानी हम उसको अनुमान से जान सकते। द्विंद्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर एक एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से योग स्थान, ये प्रक्षेप कितना होता है अश्विन में? प्रक्षेप किसको कहेंगे?
योग की वृद्धि का प्रक्षेप,
योग की वृद्धि को। ये पहले प्रक्षेप जो शब्द आया था, 16 जीवों में चार का प्रक्षेप हुआ, वो जीवों की प्रक्षेप की बात थी। प्रक्षेप उसमें एडिशन करना, चय का जिसको हम कहेंगे। अब यहाँ क्या है, एक योग स्थान सबसे जघन्य, उसमें दूसरे योग स्थान में योग के अविभाग प्रतिच्छेद कुछ ज्यादा हो गए, उसको प्रक्षेप कहा है। वो पहले वाले प्रक्षेप के साथ इस प्रक्षेप को कुछ कंफ्यूजन मत करना, ये योग के प्रक्षेप लेना। प्रक्षेप है वो एडिशन अविभाग प्रतिच्छेदों की। तो एक एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से योग स्थान, एक प्रक्षेप कम दुगुने योग स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। क्या कहते हैं, जब तक दो गुना हो जाएंगे, थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक कर 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 करके जब कहीं जाके दो गुना हो जाएंगे, पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ने पर अधस्तन दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुना स्थान जाकर यहाँ की प्रथम दुगुण वृद्धि हो जाती है। यानी वो योग स्थान थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, अभी बीच में कुछ स्थान छोड़कर डायरेक्ट क्या होता है, योग दुगुना हो जाता है। तभी हम कहें ये तो उसकी दुगुण वृद्धि, यानी यहाँ स्थान नहीं छोड़ना, वहाँ स्पर्धक की बात यहाँ नहीं लेनी है मेरे ख्याल से। क्या लेनी है,
लेनी पड़ेगी ना स्पर्धक की बात तो।
योग स्थानों में वो स्पर्धक में एक योग स्थान में स्पर्धक हो गए, अब अलग अलग योग स्थानों की कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें केवल वृद्धि वृद्धि होती चली जाएगी। योग बढ़ते 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 दो गुना हुआ, बढ़ते 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 चार गुना हुआ, आठ गुना, इस तरह से। इसमें कोई स्पर्धक की रचना नहीं है, बस योग स्थान में योग एक स्थान से दूसरे योग में कितने, जैसे हम ज्ञान मार्गणा में देखे थे, ज्ञान मार्गणा में तो पर्याय ज्ञान से लेकर अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि करते 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 अनंत गुना वृद्धि लास्ट वाला स्थान है। ऊ के बाद चार लेंगे ना,
हाँ।
तो क्या होगा, वो
एक साक्षात वृद्धि से दूसरे साक्षात वृद्धि भी।
अरे एक साक्षात्कार के पहले स्थान से लेकर अभी हम संख्यात भाग तक नहीं पहुंचे तो डायरेक्ट अनंत गुना कैसे हो जाएगा। ऊ चार फिर ऊ पांच, फिर ऊ चार ऊ पांच, वो तो दो बार लेने पर ऊ छह हो जाता है, भूल गए सब। अब ठीक है, यानी यहाँ प्रक्षेप ने योग थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा, थोड़ा कर 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 करते हम असंख्यातवा भाग बढ़ते 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 वो तो संख्यातवा भाग हो जाए ना, कितने पहले स्थान से कंपेयर करो हम तो संख्यातवा भाग बढ़ गया, तो कहते दुगुने हो जाएंगे। पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ने पर अधस्तन दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुना स्थान जाकर यहाँ की प्रथम दुगुण वृद्धि होती है। अब जब योग स्थान हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा ख्याल में आ जाएगा। हाँ, इस प्रकार दुगुने दुगुने स्थान जाकर अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान के प्राप्त होने तक सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है। यानी जघन्य से लेकर एकदम लास्ट वाला स्थान, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए तो अनेक स्थान हो गए, पर हम दो गुना वृद्धि की बात अगर करेंगे तो अंतिम जाके अंतिम बार वो दो गुना वृद्धि हो जाएगी। अब इसको तो आने पर ही पढ़ने पड़ा, उधर है ना, कल है
हाँ।
ये दुगुना वृद्धि की बात है ना, 100 पेज पर आ गए हम। सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होते हैं, वो अनेक होगी। हाँ, शंका से हम पहले पेज 99 पेज पर समाधान है, शंका समाधान वहां से पढ़ेंगे फिर दोबारा। शायद कर्मकांड लाओ, मगर उसमें से लेंगे ये बात नहीं कि शायद इसी पुस्तक में लास्ट में योगस्थान की प्ररूपना है, उसमें भी देख सकते हैं, वो मैं कल नक्की करूंगी, पर कर्मकांड रखना तो अच्छा है कल के लिए। जामानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक न सदा देत हो हुदु। अश्विन
नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो उद्धारं नमो लोय।